नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषीं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज विजय दशमी का दिवस है। तिथि है दशमी और इस तिथि के पीछे एक विजय शब्द जुड़ गया। किसी तिथि के पीछे विजय शब्द या अन्य कोई शब्द जुड़ जाता है तो वह तिथि या वह दिन कुछ विशेष मायना रखता है, कुछ ऐसे इतिहास को भी वह बताने का संकेत देता है। यह संकेत बहुत पीछे का होता है, इसके पीछे एक इतिहास होता है। दसवीं तो हर 15 दिन में एक बार आती है, किंतु विजयदशमी साल में एक बार आती है। और विजय शब्द को लेकर के दशमी यह तिथि आ रही है तो हमारे लिए कुछ तो इतिहास का स्मरण करा करके आज के दिन यह हुआ था और आज इसीलिए इस प्रकार का वातावरण यहां सामने लोक में दिख रहा है। सामने वाले वातावरण का बोध कराता है कोई दिन, तो उस दिन को हम विशेष मानते हैं, विशेष समझते हैं। और आज विजय दशमी का दिन है तो विजय दशमी के ऊपर से कुछ बातें आज सुनेंगे। यह विजय दशमी किन किन कारणों से प्रसिद्धि पाई, किन किन कारणों से, किन किन घटनाओं से यह प्रसिद्धि में आया, इस ओर यदि हम अपनी दृष्टि को ले जाते हैं तो प्राचीनतम घटना पर हमारी दृष्टि जाकर के टिक जाती है। इस विजयदशमी के दिन और भी अनेक घटनाएं कालांतर में घटित हुई होंगी, हो सकती हैं, हुई भी हैं, लेकिन कालांतर के उन सारी घटनाओं के पीछे, बहुत पीछे इतिहास में, काल में, काल के बहुत दूरी में जाकर के जब हम देखते हैं तो एक चक्रवर्ती की घटना स्मरण में आता। आज के दिन वह चक्रवर्ती जिन्होंने पहली बार 6 खंडों के अधिपतित्व को प्राप्त किया था, 6 खंडों पर प्रभुत्व संपादन किया था, यहां इस धरती पर उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य यदि 6 खंडों पर प्रभुत्व प्राप्त कर ले तो उन्हीं को हम कहते हैं चक्रवर्ती। और उनका नाम भी चक्रवर्ती क्यों पड़ता है, उसके पीछे भी कारण है। चक्रवर्ती, चक्र क्या चीज है? चक्र, चक्र जो घूमता है, घूमने वाले गोल आकार को धारण करने वाले किसी राउंड वस्तु को हम चक्र बोलते। यह चक्र कितना महत्वपूर्ण होता है इस संबंध में यदि चिंतन किया जाए तो चक्र के बिना ये संसार नहीं चलता, संसार के व्यवहार नहीं चल पाते, यह ज्ञात होता है। चक्र, आप कैसे आ गए यहां तक, तो सोचने के लिए चक्रम होने की जरूरत नहीं। महाराज क्या पूछ रहे हैं? आप कैसे आ गए तो चक्र के सहारे से ही आए हैं। अगर चक्र न होता तो इतनी जल्दी यहां आकर के उपस्थित होना और विजयदशमी का प्रवचन सुनना असंभव था। जिसके पास चक्र होता है वो बड़ा माना जाता है, और जिसके पास चक्र नहीं होता वह छोटा माना जाता है, और सबसे छोटे तो जिसके पास चक्र नहीं है वो छोटे होते ही हैं। इस सभा में सभी बड़े हैं लेकिन दो ही सबसे छोटे। सभी लोग बड़े हैं लेकिन दो ही छोटे हैं। जो चक्र का सहारा लेते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं, और जो चक्र का सहारा ले बिना चलते हैं वो गरीब माने जाते हैं, पैदल पैदल चलते। चक्रवर्ती बनने की कामना हमें नहीं है लेकिन आप लोगों की कामना बहुत बड़ी कामना होती है। पहले छोटे छोटे चक्रों को ही संभाल लेते हैं और बड़े चक्र को पा लेते हैं। अभ्यास चल रहा है आप लोगों का। छोटे छोटे चक्र बहुत सारे हैं और बहुत सारे चक्रों को जोड़कर एक बहुत बड़ा चक्र को पा लेंगे तो आप भी चक्रवर्ती कहलाएंगे। समोसरण अच्छा लग रहा है, इसमें भी चक्र ही कारण है। नहीं है? बिल्कुल है। समूह चरण बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें भी चक्र ही कारण है, चक्र से सुंदरता बढ़ती है और चक्र व्यक्ति का वह संपदा होती है, बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती है और सभी चक्रों में सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च चक्र यदि कोई होता है तो उसी चक्र को सही चक्र मानना चाहिए जो चक्रवर्ती के पास होता है। उनके पास जो चक्र होता है वह उनका नहीं होता, उनको भी कोई न कोई गिफ्ट में देने वाला होता है और गिफ्ट में देने वाला ऐसे फ्री में नहीं देता, कुछ न कुछ सामने वाले के पास प्रभाव होना चाहिए तभी देता है। क्या प्रभाव होना चाहिए प्रश्न उठता है। आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप में कुछ प्रभाव होना चाहिए, तो चार चक्र वाली गाड़ी आपको मिल जाती है, आपके पास भी प्रभाव होना चाहिए। क्या प्रभाव होना चाहिए, इसका प्रभाव जितना जोरदार हो, चक्र भी जोरदार, और उसको उन चक्रों को घुमाने वाली मशीन भी जोरदार। घंटे के हिसाब से इसका रफ्तार क्या है इसका निर्णय मशीन पर है और मशीन भी एक चक्र ही है। मशीन है और चक्र ना हो ऐसा कोई दुनिया में मशीन ही नहीं। मशीन भी चक्र है और चक्र के सहारे से चार चक्र हैं, वो जब घूमते हैं तब हमारा रास्ता तय होता है। चक्र के माध्यम से ही हम दिग्विजय करने के लिए निकलते। कोल्हापुर से लेकर यहां तक जो आ गए दिग्विजय करते करते किस दिशा में आए, चार चक्र को लेकर के। पूरब की ओर आए, किस दिशा में आए आप लोग, पूरब की ओर है ना, बिल्कुल पूरब की ओर आए। आज दशहरा के दिन दिग्विजय करके भरत चक्रवर्ती भी पूरब दिशा से ही आर्यखंड में प्रवेश किए थे। पूरब दिशा से आए हो और निकलते समय भी पूरब दिशा की ओर निकले, पूरब दिशा की ओर जाकर के गंगा नदी के किनारे किनारे से लवण समुद्र तक जाकर लवण समुद्र के किनारे किनारे से वो म्लेच्छ खंड में पहुंच जाते हैं। सिंधु नदी को पार करके म्लेच्छ खंड में पहुंचते हैं। गंगा सिंधु कहते ही आपके स्मृति में ये नहीं आना चाहिए जो एक बनारस की तरफ है और एक पाकिस्तान की तरफ है, ये गंगा सिंधु नहीं, वो गंगा सिंधु अलग। उन गंगा सिंधुओं का नामकरण किया गया है जो हमारे भारत में जो महानदियां हैं इनको गंगा और सिंधु नामकरण किया है। लेकिन असल में चक्रवर्ती इन नदियों के किनारे से नहीं गया था, वो उन नदियों के किनारे पर जाकर के लवण समुद्र की ओर मुड़े और सबसे पहले पश्चिमी म्लेच्छ खंड को जीता। पश्चिम की दिशा में रहने वाले म्लेच्छ खंड को जीतकर फिर वे विजयार पर्वत की गुफाओं में से अपनी सेना को निकाल करके उस पार गए। विजयार की गुफा से उस पार जाने के बाद उस ओर भी एक म्लेच्छ खंड और फिर वे पूरब की ओर और मुड़ जाते हैं। तो सिंधु नदी को पार करके गंगा और सिंधु नदी के बीच में रहने वाले एक मृच खंड को और जीत लेते, फिर उसको पार करके गंगा नदी के उस पार जो एक मृच खंड है उसको जीत लेते। बीच में विजयार्द पर्वत है, इसी पर्वत के गुफा में से पार होकर के तीन मृच खंडों को और विजयार्द गुफा के दक्षिण की तरफ रहने वाली एक मृच खंड को, ऐसे चार मृच खंडों का विजेता बनता है चक्रवर्ती। फिर चार खंडों का विजयी बनने के उपरांत पांचवा मृच खंड को विजित करने के लिए, जीतने के लिए वह पुनः पश्चिमी विजयार्द पर्वत के गुफा में से होकर के दक्षिण की ओर आता और उस छोटे मृच खंड को जीत करके सीधा गंगा नदी को पार करके पुनः आर्य खंड में प्रवेश करता है। बताया जाता है चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय के लिए वो गए तो बहुत लॉन्ग समय लग गया, बहुत लंबे समय तक वो चले गए। कितने साल तक? 7 साल नहीं, 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष तक दिग्विजय किया, 60,000 वर्ष तक। और अपनी उम्र क्या है? 60 वर्ष। हमारी टोटल उम्र ही 60 वर्ष। और उस समय के जो पहला चक्रवर्ती हुआ था और इस भरत क्षेत्र में जो पांच मृच खंड और एक आर्य खंड होता है इसको विजय करने के लिए जो पहला चक्रवर्ती हुआ था उनकी उम्र क्या थी? कहा है जब चतुर्थ काल प्रारंभ होता है तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम तृतीय काल व्यतीत होने के उपरांत चतुर्थ काल प्रारंभ होते ही मनुष्य को एक पूर्व कोटि आयु प्राप्त होती है। एक पूर्व कोटि आयु, महाराज जी कितना लंबा होता है पूर्व कोटि? यानी पूर्व यानी हम तो ये समझते हैं कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, और कोटि आयु यानी कोटि करोड़, तो पूर्व में कैसा करोड़, एक कौन सा शब्द है ये पूर्व? यह संख्यावाचक एक शब्द है। पूर्व यानी बहुत बड़ा, बड़ी संख्या वाली बात है। पूर्व 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग होता, 84 लाख, हाँ 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता। और ऐसे 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना करो, हाँ 70,56,000 करोड़ वर्ष होता है। इतने का एक पूर्व होता है, इतने वर्षों का एक पूर्व, 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्व, एक पूर्व। ऐसे कितने पूर्वों की आयु होती है चौथे काल के प्रारंभ में, जब प्रथम तीर्थंकर आदि जन्म लेते हैं उस समय में आयु कितनी होती है? तो कहते हैं एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि यानी ऐसे पूर्व कितने? करोड़, करोड़ पूर्व, एक करोड़ पूर्व की आयु होती है। एक पूर्व में इतने वर्ष हैं, 56 कितना? 70,56,000 70,56,000 वर्षों का एक पूर्व हुआ और एक पूर्व में कितने वर्ष हो गए? उतने ही हुए। 84,000 × 84,000 वर्ष, इसको एक पूर्व कहा। ऐसे 84 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ पूर्व वर्षों का एक पूर्व कोटि कहते हैं। वो तो आदिनाथ भगवान की आयु है 84 लाख, उसमें 16 लाख पूर्व वर्ष कम थे। 1 करोड़ पूर्व में 16 लाख पूर्व कम थे। अब 16 लाख पूर्व को मिला लो तो बरोबर 1 करोड़ पूर्व होता है। चौथे काल में, प्रारंभ काल में आयु मनुष्यों की इसी धरती पर, यही, कहीं अन्य देश की बात नहीं कर रहे हम, इसी देश में जीवों की आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है। अब उसको संख्या में रखो तो आप पढ़ नहीं सकेंगे, आप पढ़ ही नहीं सकेंगे, आप कंप्यूटर में भी आएगा नहीं वो। आ सकता है, ट्राई करें। 1 करोड़ 1 कोटि पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, वर्षों में कन्वर्ट कर दो तो कितने अंक प्रमाण आता है देख लो। इतनी बड़ी आयु थी और भरत चक्रवर्ती, मान के चले कि 1 पूर्व कोटि वर्ष का यदि है तो 60,000 वर्ष उसमें से किसके लिए निकाला? दिग्विजय के लिए। 60,000 वर्ष क्या मायना रखता है? कुछ भी नहीं। 60,000 वर्ष तो 60 दिन के बराबर है उस आयु के सामने। 60,000 वर्ष तक उन्होंने 5 म्लेच्छखंडों को जीतकर अपने देश आए आर्यखंड के लिए। तो देखो आयु कितनी लंबी होती थी पहले, आज कितनी है और पहले कितनी थी। और यह काल कितना वर्ष पहले का मालूम? 1 पूर्व कोटि वर्ष पहले का है। 1 पूर्व कोटि नहीं, ये 1 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष नहीं कहना, सागर ही कहना उसको, केवल सागर पहले की बात है। इतने लंबे समय तक काल चक्र धीरे धीरे घूमता रहा। चौथा काल 1 कोटा कोटि पूर्व वर्ष का निकल गया। अब पंचम काल लग गया। पंचम काल लगते लगते 24 तीर्थंकर सारे समय समय पर होते होते, एक साथ तो होते नहीं, एक तीर्थंकर हो गए तो दूसरे तीर्थंकर को जन्म लेने के लिए करोड़ों अरबों खरबों खरबों वर्ष लगते थे, तब कहीं जाकर के एक तीर्थंकर का समोक्षरण देखने को मिलता था। बहुत लंबा पीरियड निकल जाता था, लोग तरसते थे तीर्थंकर कैसे होते हैं देखना है, पंच कल्याणक देखना है, समोक्षरण देखना है। चौथे काल में भी समोक्षरण देखने को मिलता नहीं था, आसान नहीं था देखना। जैसे हमें दिखाई नहीं देता है ना अभी, वैसा ही उस समय था। और वो समोक्षरण हम लोगों के सामने नहीं है, इसलिए हमें ऐसा बना करके देखना पड़ रहा है। यहाँ कैसा लग रहा है? जब चक्र चलता है तब कैसा लगता है, और जब चक्र जब रुक जाता है तब कैसा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है? चक्र जब घूमता है तो समोचरण भी अच्छा लगता है। पुष्पक विमान प्रदक्षिणा दे करके भगवान को पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। जहाँ चक्र होता है वहाँ पर व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। चक्रवर्ती के पास भी एक चक्र था जिसके बल पर उन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त किया था, और विजय प्राप्त करके आज के दिन कहाँ पहुँच गए थे? अयोध्या, अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी की प्रथम राजा भरत चक्रवर्ती रहा, अयोध्या के राजा रहे हो, और ऐसे अयोध्या के अंदर प्रवेश करने के बाद आज के दिन इतना अच्छा सुंदर वातावरण वहां पर था कि सारा अयोध्या जय घोष से, राजा भरत चक्रवर्ती की जय। जैसे कोई राजा युद्ध जीत करके आता है ना, रामायण देखा होगा, राम भी अयोध्या में चले गए थे, क्या जीत कर? लंका जीत कर। लंका जीत कर जब अयोध्या चले गए तो उस दिन भी शायद यही दिन था, है? दिवाली के दिन पहुंचे थे। हाँ, वो दिवाली का दिन था। और जब नगर में प्रवेश होता है किसी राजा का तो देखिए कितना उत्सव मनाया जाता है। आज ऐसा ही उत्सव मना रहे थे अयोध्या में, और राजा के पहुंचने के बाद राजा अपनी खुशी में, मैं 60,000 वर्ष के बाद पुनः अयोध्या आया, इतने वर्ष तक अयोध्या को छोड़ना पड़ा, दिग्विजय के लिए जाना पड़ा, लौट करके अयोध्या आए। अयोध्या आने के उपरांत तो उनको भी खुशी थी, उनको अपनी खुशी में सोना बांटना था, सोना बांटे हो। 6 खंड का अधिपति बनने के बाद तो उस चक्रवर्ती के पास कितना सोना रहा होगा, कल्पना करो। इस धरती पर जो भी सोने के खदान हैं उनके, और उन खदानों से जो सोना इकट्ठा हुआ था, राशि का राशि ढेर सारा लग करके रख दिया, और कह दिया प्रजा से आज खुशी का दिन है, लूटो सोना, लूटो सोना, जितना चाहिए लूटो। और उस दिन सोना लूट रहे थे। आप लोग क्या लूटते हैं? किसी दूसरे के प्राणों को लूटते, सोना नहीं लूटते। हम किसी जीव का प्राण घात करके उनके प्राणों को लूटते हैं, सोना नहीं लूटते। और उस वनस्पति का नाम हमने रख दिया ये सोना, कितनी झूठ बात है। वनस्पति सोना हो सकता है? सोना तो नहीं हो सकता, वनस्पति सोना नहीं है। वनस्पति तो एक जीव है, एकेंद्रीय जीव, और उसको सोना 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 ये पता नहीं कब से यह फेमस हो गया वनस्पति को सोना कहना। ये पद्धति कैसे आ गई पता नहीं, लेकिन ये जरूर हमको पता है जब लोगों में दरिद्रता आई, जब दरिद्रता आई, सोने से रहित हो गए लोग, तब किसी वस्तु को सोना कह करके उसको लूटना प्रारंभ कर दिया। सारे खेतों के पेड़ लूट गए, उसके पत्ते पेड़ सब खाली हो गए, पत्ते को उतार करके बाजार में ला करके लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो जब से भी यह बात चली हो जब से भी शुरू हुआ हो, लेकिन तब से हमको कहना चाहिए लोगों में दरिद्रता आई, सोना नहीं दे सके। हो सकता है भरत चक्रवर्ती के उपरांत भी उस समय की घटना को याद करके लोग इस दशहरे को मनाते होंगे और बराबर एक कोटा कोटी वर्ष तक ये दशहरा मनाते रहे, मनता रहा ये दशहरा। और इस दशहरे को मनाते हुए लोगों ने सोने के सिक्के बांटे होंगे, लूटो इस सोने के सिक्कों को, ये भी कहा होगा। लेकिन कालांतर में सोने का मूल्य जब बढ़ गया तो लोग सोने से तो दरिद्र हो गए और सोने को लूटने के बजाय किसी वनस्पति का नाम, किसी पेड़ का नाम सोने का पेड़ रख दिया और सोने का पत्ता रख दिया। आज के दिन और बीते कल के दिन और उससे एक दिन पहले, इन तीन दिनों में वो जो सोने का पेड़ होता है जंगल में, खेतों में, किसान काम करके दिन भर अगर छाया में बैठना चाहता है तो उसको आज के दिन तो छाया नहीं मिलेगी, धूप में बैठना पड़ेगा। क्यों? सारे पत्तों को चुपचाप जा करके ये व्यापार करने वाले, आज कोल्हापुर में सोने के पत्ते बिकते हैं सिटियों में बहुत चाहिए पड़ता है, ये सब लोग आज खरीदते हैं इसको, आज व्यवसाय का दिन बन गया, लोग उसको तोड़ करके लाते हैं और बाजार में बेच देते हैं और एक दिन की उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन देखिए इस पत्ते को बांटना, इस पत्ते को लूटना, ये सत्य घटना थी या सोने की बात सत्य घटना थी? भरत चक्रवर्ती ने क्या लुटाया था? सोना, सोने के सिक्के ला करके उन्होंने ढेर सारा रख दिया, लूटो सोना, जिसको जितना चाहिए भर के ले जाओ। किमिच्छिक दान देता है चक्रवर्ती, किमिच्छिक दान देता है, तुमको जितना चाहिए भर के ले जाओ, लेकिन गाड़ी नहीं लाना, तुम्हारे सिर पर तुम जितना भर करके ले जा सकते हो, बोरी भर करके भर लो और ले जाओ, लूटो सोना। और उस दिन खुशी का दिन था, दशहरा, और दिग्विजयी होकर के लौटे थे और अंत अंत में उन्होंने आर्यखंड को जीता था। पहले पांच मिलिज खंडों को जीत करके आए, जिस देश से वो निकल गए उसको जीता नहीं, इसको तो ऐसा ही रख दिया। पहले तो पांच मिलिज खंडों को जीत करके आएंगे और फिर लास्ट में आर्यखंड, अपने ही देश को हम जीतेंगे, और आने तक ये कहीं जाएगा नहीं, यहाँ के सारे लोग देखेंगे कौन कौन कितने राजा हैं, हमारे विरोध में खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये सब सोच करके वो चले जाते हैं। पांच मिलिज खंडों को जीत लेते हैं, लेकिन पांच मिलिज खंडों में एक भी राजा चक्रवर्ती के विरोधी नहीं मिला। युद्ध लड़ने के लिए गया था, सेना सहित गया था, घाड़ी घोड़े हैं, 84 लाख हाथी और 84 लाख कितने घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये बताया जाता है चक्रवर्ती की ये संपदा है, पशु संपदा, पशुधन। इतने सारे सेना को, घोड़ों को, हाथी को युद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं और इतनी बड़ी सेना आती हुई देख करके मलेच्छ खंड के राजा लोग पहले ही सुन लेते थे कितनी बड़ी सेना आ रही है, कहते किसकी सेना, वो कोई आर्यखंड का चक्रवर्ती आ रहा है और वो यहाँ पर विजयी होने के लिए आ रहा है, ये सुनते ही वो कहते इतनी बड़ी सेना है तो हमारी ताकत तो कुछ नहीं चल सकती। और सेना ही नहीं, उनके पास एक चक्र है, वो चक्र घूमता रहता है, घर 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 घूमता रहता है, जैसे पंखा घूम रहा है आप लोगों के ऊपर ऐसा घूमता है, हमेशा ही घूमता है और साथ चलता है उनके। और वह चक्र यदि कोई उन राजा का शत्रु दिखाई देता है तो वह चक्र सबसे पहला जाकर के बातचीत करता है, क्यों, राजा का मित्र या शत्रु इतना ही बताओ, आगे पीछे होता है ऐसा ऐसा करता है, राजा का शत्रु या मित्र इतना ही बताओ, हम तो मित्र हैं। तो वापस जाता है चक्रवर्ती के पास, लौट गया। और कोई शत्रु अगर कह दे तो बस पंखे के सामने खड़े तो हो जाओ, देखेंगे कैसे कोई शत्रु अगर कह दे तो वह सबसे पहला उस राजा को उड़ा देता कि कौन सा चक्र, इस चक्रवर्ती ने ऐसे चक्र को कैसे बनाया, किस मशीन से बनाया, और आकाश में घूमता हेलीकॉप्टर जैसे, ये मनुष्यकृत नहीं है, ये है देवकृत चक्र। और यह चक्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास व्यक्तित्व चाहिए, कैसा व्यक्तित्व, पुण्य का व्यक्तित्व, कितना पुण्य, बहुत पुण्य। तीर्थंकरों से भी ज्यादा नहीं, तीर्थंकर चक्रवर्ती से बहुत बड़े पुण्यशाली होते। तीन लोक में यदि सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली कोई जीव है तो उनको चक्रवर्ती कहे कि तीर्थंकर कहे, तीर्थंकर वो हैं। वो कहीं दिग्विजय के लिए नहीं जाते, उनके पास कोई 6 खंड के अधिपति तो नहीं है, वो कोई 3 लोक के स्वामित्व बुद्धि वाले तीर्थंकर भी नहीं है, उनको 3 लोक का 1 परमाणु भी नहीं चाहिए, लेकिन 3 लोक का परमाणु भी जिसको नहीं चाहिए उसी के पास इतना बड़ा पुण्य भंडार वास करता है। सबसे अधिक लक्ष्मीमान, धनवान यदि कोई है तो उनको हमें कहना चाहिए तीर्थंकर। तो 3 लोक का 1 परमाणु भी उनके पास नहीं रहता है फिर वो लक्ष्मीपति कैसे है? मोक्ष लक्ष्मी तो बाद की बात है, अभी तो संसारी हैं, जन्मे हैं, तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आए हैं, उस तीर्थंकर नामक नाम कर्म के उत्कृष्ट पुण्य कर्म है, वो नाम कर्म के उदय से तो जन्मे हैं, 5 कल्याणक उसी के प्रभाव से होते हैं, 5 कल्याणक देवों के द्वारा होते हैं, मनुष्यों के द्वारा एक भी कल्याणक नहीं होता, गर्भ कल्याणक देव ही करते हैं, जन्म कल्याणक देव ही संपन्न करते हैं, दीक्षा कल्याणक देव ही संपन्न करते हैं, देव ही आते हैं पालकी में बिठा करके ले जाते हैं। मनुष्य जरूर कंधा लगा लेता पहले, लेकिन वापस दे देता है, अपना अधिकार तो जमाना पड़ता है, इसलिए कंधा जरूर दे देता है पालकी को, लेकिन बाद में तो अधिकार देवों का हो जाता है और इंद्र समक्ष खड़ा रहता है और दीक्षा होती है तीर्थंकर की। सारे स्वर्ग के देव लोग आकर के यहां पर देखने लगते हैं दीक्षा कल्याणक को, लौकांतिक देव तक चले आते हैं। ऐसे दीक्षा कल्याणक, ऐसा ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान होना और निर्वाण कल्याणक मोक्ष प्राप्त कर लेना, इन संदर्भों में कौन आते हैं कल्याणक मनाने के लिए? मनुष्य नहीं आते, देव आते हैं। और पांच कल्याणक पाना ये हर किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, ये पांच कल्याणक उन्हीं को होते हैं जिनके पास तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म विद्यमान है। और फिर ये लक्ष्मीपति हैं, चक्रवर्ती के पास जितनी संपदा है उससे भी बड़ा पुण्य, चक्रवर्ती के पास जितनी संपदा है वो स्वर्ग में, इंद्र के पास जितनी संपदा है वो, उन दोनों संपदा के मालिक इन्हीं को कहना चाहिए, क्योंकि इनको जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तीर्थंकर को, तो इनका शरीर तो अधर में उठता है, पहले दिगंबर रहते हैं, एक भी चक्र नहीं, कोई भी चक्र, कोई सा भी चक्र उनके पास नहीं होता, दुनिया का एक परमाणु भी रखते नहीं, ना उनके प्रति कोई आशा, ना कोई मोह, ना उनके प्रति लोभ। इस प्रकार से दिगंबरत्व की साधना करते 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 इस तपस्या के माध्यम से जब वो केवल ज्ञान पा लेते हैं तो उनका शरीर 500 धनुष ऊपर उठ जाता है आकाश में, केवल ज्ञान होते ही और वह शरीर आकाश में ठहरते ही स्वर्ग में सिंहासन कंपायमान होता है और स्वर्ग में घंटी बज जाती है। इसको सुनकर देवेंद्र कहता है ये क्या हो रहा है आज, अवधि ज्ञान लगा करके देख लेता है क्या घटना घटी, तो पता चलता है मध्यलोक में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में और पंच पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी, उसका नाम राजगिरी। महावीर भगवान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी, राजा के गिरी, पांच गिरी, राजा श्रेणी के, उसकी एक गिरी पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनका शरीर 500 धनुष अधर में चला गया, स्वर्ग में पता चला इंद्र को, घंटी बजी, सिंहासन कंपायमान हुआ, केवल ज्ञान के उत्पत्ति को सुन करके सात हाथ अपने सिंहासन से उतर कर भगवान को नमस्कार किया और तुरंत कुबेर को बुलाया, उनके कोषाध्यक्ष स्वर्ग में, कोषाध्यक्ष स्वर्गीय संपदा का मालिक लेन देन व्यवहार जिसके पास होता है वह उनको बुला लेता है, चलो जाओ पहली वंदना करो, सात हाथ दूर बढ़ करके वंदना करो, सात हाथ सात कदम आगे जाकर वंदना करो। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और यह हमारी संपदा, स्वर्ग की संपदा, ये हमारी संपदा नहीं, ये तो केवल ज्ञानी की संपदा। भगवान की संपदा है, इस सारी संपदा को ले जाओ और वहां पर बिछाओ, केवल ज्ञानी के नीचे बिछाओ, तीर्थंकरों के चरणों में बिछाओ और समोसरण सभा को तैयार करो और उस समोसरण में इतनी संपदा आ जाती है, सब स्वर्गीय संपदा है, देवकृत है। स्वर्ग की उस संपदा से सारी समोसरण की संरचना हो जाती है, वहां पर प्रत्येक वस्तु विद्यमान है। दुनिया में जितनी वस्तु हैं वो सारी की सारी वस्तु समोसरण में मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति वहां जाने वाला मैंने इस वस्तु को नहीं देखा ऐसा नहीं होता, हर वस्तु को जो देखना चाहता है उसको देख सकता है, ऐसा ही होता है। वो एक सरोवर होता है समोसरण के अंदर और उस सरोवर में नीचे होता है सरोवर, जो ब्रिज बंधे हुए हैं चारों ओर या चार दिशा में, वो सरोवर कहलाता है। उसमें निर्मल जल होता है। भव्य जीव जो प्रवेश करते हैं मानस स्तंभ के द्वार से, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 20,000 सोने की सीढ़ियों को चढ़ करके भगवान के समोसरण में धर्म सभा में पहुंचते, जहां पर मुनि वगैरह बैठे, वहां तक 20,000 सोने की सीढ़ियां होती हैं। चढ़ करके चले जाते हैं, जब वो सरोवर बीच में पड़ता है तो झांक करके उस सरोवर में पुल के ऊपर से जब देख लेते हैं, आप जैसे भव्य आत्मा जब नीचे पानी में दिखते हैं तो अपना चेहरा पानी में दिखता है और अपना चेहरा दिखने के साथ साथ हमारे आगे और पीछे के तीन तीन भाव दिख जाते हैं, सात भाव दिखते, पीछे के तीन और आगे के तीन। मैं क्या बनूंगा तीन भाव तक, वो भी दिखता है, और क्या मैं तीन भाव तक था, कहां से आया, किस गति से आया, ये भी दिखता। सात भाव दिखते हैं और सात भाव दिखने के लिए वह सरोवर आपको साथ देता है, लेकिन उसका साथ आप नहीं निभा पाते हैं तो भटक करके पुनः वापस आ जाते हैं। सरोवर साथ निभाता है, वो कहता है पिछले भाव में तुम ये थे, अगले भाव में तुम ये बनोगे, अब समझ जाओ यदि संसार का तुम अंत करना चाहते हैं तो मैं साथ देता हूं। यह जीव अनंत काल से जन्म मरण करता हुआ संसार में चला आ रहा है, जन्म मरण का कोई भी अंत नहीं है। हम यदि मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धर्म पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो संसार में रहेंगे, और धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार से मुक्त हो सकते। जाग जाओ, पुनर्जन्म है, संशय मत करो। पुनर्जन्म को जो नहीं मानता है उनको पुनर्जन्म पर विश्वास हो जाता है, जब वह सरोवर के ब्रिज पर खड़ा होकर के पानी में अपने चेहरे को देख लेता है तो सात भाव झलकते हैं। ये समोसरण की महिमा है, हर व्यक्ति को झलकते, आप लोगों को भी, मिथ्या दृष्टि को भी, सबको, बाबा उनको और झलकते हैं क्योंकि उनका संसार अनंत होता है, किंतु अभव्य जीव वह धर्म पुरुषार्थ करता हुआ आत्म कल्याण नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकते। भव्य जीव को झलकता है तो भव्य जीव अगर जाग जाए, ये अनंत भवों के परिपाटी को समाप्त करके मैं भवमुक्त हो जाऊं, जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाऊं, ऐसा सोचकर यदि वह आगे बढ़ जाता है और समोषण सभा में जाकर के बैठ जाता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेता है, तो वह वैरागी बन जाता है। वैरागी बनने के बाद अगर संयम धारण कर लेता है तो उसके आठ भव रह जाते हैं, आठ भव भविष्य के। इतिहास में हम अनंत काल से भटकते हुए आए हैं, इतिहास के भवों का कोई अंत नहीं है, अनंत है, पर हमारे लिए झलकते हैं केवल पीछे के तीन सरोवर में, और आगे के झलकते हैं तीन। लेकिन संयम अगर धारण कर लेता है तो अधिक से अधिक वह आठ भव के अंदर मोक्ष जा सकता है, और जिसको उसी भव से मोक्ष जाना हो, जैसे गौतम गंधर्व भी गए थे, तालाब में देखा होगा, झांक करके उन्होंने भी देखा होगा, समोसन से आगे बढ़ गया और तालाब आ गया और झांक करके देखा, तो उनके कितने दिखे होंगे? पीछे के तीन दिखे होंगे, चार ही तो दिखे होंगे। उसी भव से मोक्ष जिसको जाना है, उनको आगे के भव झलकते नहीं, और इसलिए विश्वास हो गया, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कोई हूं, कुछ हूं, और मेरे लिए चार झलक रहे हैं और इन लोगों के साथ साथ झलक रहे हैं, ये क्या बात है? सोचा तो होगा गौतम ने, इनको तीन झलके और सात से तो ज्यादा किसी के झलक नहीं रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं, चौथे भव में मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं, उनके और भी वो हो सकते हैं, लेकिन झलकने की कैपेसिटी उसमें सात की है। झांक करके देखते हैं तो सात दिख जाते हैं, लेकिन आपके भव कितने बचे हैं इसको आप यदि निश्चित करना चाहते हैं तो जाओ समोषण सभा में और भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनो और बैठ करके अपने आत्मा के अनंत कालीन मोह की मलिनता को, मोहनी कर्म को धोना प्रारंभ कर दो, और जैसे भगवान इस पृथ्वी के किसी भी परमाणु पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर मोह नहीं रखते, ऐसा निर्मोही हो करके यदि आप भी संयम धारण करेंगे तो भगवान स्वयं गारंटी देते हैं, हे भव्यात्मा, तेरे भव तो अनंत हो सकते थे, अगर संयम धारण नहीं करेगा तो अनंत भव हो सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर तो कम से कम आठ भवों को रख सकता है, कम से कम तीन और अधिक से अधिक आठ, आठ भव में किसी के तीन रह जाते हैं और किसी के चार रह जाते हैं, किसी के पांच रह जाते हैं, किसी के छह और किसी के सात, और अधिक से अधिक आठ भव रह जाते हैं। देखो संयम की ये महिमा है, धर्म का उपदेश सुनने के बाद अपने जीवन में यदि हम संयम नहीं लाते हैं, संयम धारण नहीं करते हैं, तो धर्मोपदेश सुनना बिल्कुल व्यर्थ है। धर्मोपदेश क्यों सुना जाता है, क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए कि हमारे अनंत भाव समाप्त हो और अल्पभव में हम भी एक आत्मा हैं, हम भी परमात्मा बने। परमात्मा का दर्शन करते करते हमारा मोह को धक्का लगे और मोह समाप्त पहले हो जाए और इसके उपरांत हमारे भाव सीमित बन जाए और सीमित भाव में हम भी आत्मा हैं, परमात्मा बने, यही तो भावना है, होना चाहिए। ये भावना यदि किसी को होती है तो निश्चित रूप से इस भावना को यदि वह समूह शरण में जाकर साकार करेगा तो इस भावना के माध्यम से वह मोह का अंत कर सकता है। मोह का अंत करेगा तो संयमी बनेगा, संयम धारण करेगा तो अंत में समाधि मरण करेगा। संयम धारण किया और समाधि मरण नहीं हुआ तो आठ की गारंटी, आठ भाव की गारंटी है क्या? नहीं। आठ निश्चित कब होंगे? हाँ, संयम भी धारण करना और लास्ट में संयम समाधि मरण में भी सक्सेस होना, महाराज जी संयम की बात हो गई। संयम तो मुनि को होता है, मुनि दीक्षा लेने वाले आठ भाव में यदि मोक्ष जाते हैं तो हम श्रावक आठ भाव में मोक्ष जाने के लिए क्या करें? हम श्राविका आठ भाव में मोक्ष जाने के लिए क्या करें? हमको भी आठ भाव में जाना संभव है भी या नहीं, क्या केवल मुनि को ही जाना संभव है? तो भगवान ने कहा है श्रावक भी अपने धर्म पुरुषार्थ से आठ भाव में मोक्ष जा सकता है, एक संयमी भी जा सकता है और एक श्रावक भी आठ भाव में मोक्ष जा सकता है। लेकिन कौन सा श्रावक? तो कहते हैं मुनि के पीछे वह ऐलक, क्षुल्लक, दसवीं प्रतिमाधारी, नौवीं प्रतिमाधारी, आठवीं, सातवीं, छठी, पांचवीं, चौथी, दूसरी, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं उतरना। कम से कम दो प्रतिमा तो कंपलसरी पालन करो, घर में रह करके इनका पालन हो सकता है। तो फिर महाराज उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तुरंत प्रश्न पूछते और कह दिया तो महाराज इसको हमको होता ही नहीं है। दो प्रतिमाओं का लक्षण रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। दो प्रतिमाओं का लक्षण समझना चाहिए और उसमें जो जो कहा है वो करना पड़ता है। घर छोड़ना नहीं पड़ता, घर में ही रहकर दो प्रतिमा का पालन करो। घर में ही रहकर दस प्रतिमा तक आप पालन कर सकते हैं, पर प्रतिमा का पालन करने वाला सबसे पहला अपने आहार पद्धति को सुधारता है। क्या खाना और कैसे खाना, ये दो बातें हैं। क्या खाना? तो अच्छा खाना। कैसे खाना? अच्छी तरह से खाना। दो ही बातें सीखना है, आठ भाव बचाना है तो दो ही बातें, क्या खाना, अच्छा खाना, कच्चा नहीं खाना, पक्का खाना, अच्छा खाना। और अच्छा और पक्का वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है क्या शुद्ध होता है? शुद्ध होता है। भक्ष्य होता है क्या अभक्ष्य होता है? भक्ष्य होता है। मुनि महाराज को जो आहार देते हैं आप लोग, वही आहार नित्य खाना। वो शुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है? शुद्ध होता है, वही आहार खाना। पानी कैसे लाते हैं? जीवानी छोड़कर छान कर। जीवानी मुख्य है, जीवानी मुख्य है, जीवानी करके पानी लाना और 48 मिनट के भीतर उसको उपयोग करना, क्योंकि 48 मिनट के बाहर चला जाए तो उसमें और कीटाणु हो जाते हैं। पानी दया धर्म को निभाते हुए लाया गया पानी, जीवाणी को करके लाया गया पानी उसका उपयोग करना। और आटा है, हाँ, आटे के पदार्थ और 36 मसाले के पदार्थ, 36 मसाला कोल्हापुर में कई प्रसिद्ध है कोई दुकान, 36 मसाले का दुकान उनका नाम। जो भी वस्तु है उस वस्तु की काल मर्यादा का एक चार्ट है, वो कैलेंडर टाइप का अभी छप रहा। अगर 8 भाव में मोक्ष जाना है तो कैलेंडर को लगा देना काल मर्यादा का, और एक एक चीज की जो काल मर्यादा है वस्तु की, उस मर्यादा को समझते हुए उस वस्तु का उपयोग करना। और इस प्रकार के भक्ष्य वस्तुओं का सेवन करते हुए क्या खाना तो ऐसा खाना, क्या खाना तो ऐसा खाना, और कैसा खाना तो अच्छा खाना। अच्छा खाना है कि मतलब भरपूर नहीं खाना, दो बार भोजन करना, 3 बार भोजन कर लेना, लेकिन 4 बार तो नहीं करोगे ना, 2 बार कर लो काफी है। 2 बार शुद्ध भोजन कर लो, सुबह शाम शुद्ध भोजन, दिन में ही खाना, रात को नहीं खाना, अहिंसा को निभाना। ऐसा करते करते अन्य जो व्रत हैं उनको भी निभाना। पंच पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको एक देश त्याग करना, पूरा त्याग करना तो मुनि अवस्था, आंशिक त्याग करना तो प्रतिमाधारी का लक्षण है, प्रतिमा है। तो एक देश पंच पापों का त्याग करना, और यदि 2 प्रतिमा ली है तो 2 बार सामायिक जरूर करना, 48-48 मिनट, 2 बार, कम से कम 48 मिनट 2 बार सामायिक करना। और क्या करना, कुछ भी नहीं करना, यही करना। वो बहुत अच्छा है, हैं? कुछ भी नहीं करना, यही करना, ये बहुत अच्छा है। कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो कर्म बंधता है, कुछ भी ना करने से 48 मिनट के भीतर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन हम करने धरने की बात को रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, जिंदगी करने में ही व्यतीत होती है। करना पड़ता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करते हैं उसको अच्छा करो, अहिंसा पद्धति से जो कुछ करना है अहिंसा पद्धति से करो। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक आवश्यक हिंसा, एक अनावश्यक हिंसा। वो संकल्प आदि की बात तो बाद में, मुख्य बात तो ये है अपने जीवन में आवश्यक हिंसा कौन सी है और अनावश्यक हिंसा कौन सी है, ये 2 बातें ध्यान में रखना। आवश्यक हिंसा जो होती है वो करना ही पड़ता है, उसके बिना चलता नहीं, इसको आवश्यक हिंसा कहते हैं। जैसे हिंसा के बिना भोजन तैयार नहीं कर सकते, जल को गर्म करना पड़ता है, हिंसा होती है, अग्नि को जलाना पड़ता है, हिंसा होती है, सब्जी बनानी पड़ती है, हिंसा होती है, ये आवश्यक हिंसा है। शरीर को आहार दिए बिना शरीर नहीं चलता, शरीर के लिए इतनी आवश्यक हिंसा तो होती ही है। अनावश्यक हिंसा का त्याग हमेशा के लिए करना। अनावश्यक हिंसा क्या क्या? पहली बात, आपका जीवन शाकाहार से चल सकता है क्या? नहीं है? क्या शाकाहार नहीं रहेंगे तो मरेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो अनावश्यक कौन सा हुआ? मांसाहार अनावश्यक हो गया। आवश्यक कौन सा हुआ? शाकाहार। और शाकाहार और मांसाहार इन दोनों में हिंसा है। बड़ी हिंसा किस में है? मांसाहार में। क्यों है? मांसाहार में सबसे बड़ी हिंसा होती है और शाकाहार में कम होती है, ऐसा क्यों है? जीव देखो, वो मांस शरीर वाले जीवों को मारा जाता है, मार करके मांस निकाला जाता है, मांसाहार करते। मांस शरीरधारी आत्मा वह पंचेंद्री भी हो सकता है, द्विंद्री भी हो सकता है। द्विंद्री जीव को मार करके कोई नहीं खाता, पंचेंद्री को मार करके अपना आहार बना लेता है। पांच इंद्री वाला एक जीव है, उसके पास पांच प्राण हैं, इंद्री प्राण। और जल वनस्पति ये भी जीव हैं, ये एकेंद्री हैं, इनके पास एक ही इंद्री है। पांच इंद्री वाले जीव को मारना बड़ा पाप है या एक इंद्री वाले जीव को मारना बड़ा पाप है? अच्छा, बड़ा पाप तो पांच इंद्री वाले जीव को मारने में है। तो बड़ा पाप करना अच्छा है कि छोटा पाप करना अच्छा है? महाराज दोनों ही नहीं करना चाहिए। तो दोनों नहीं करोगे तो चलेगा तो है ही नहीं है? जीवन जिंदगी नहीं चल सकती। दोनों त्यागोगे जिंदगी चल ही नहीं सकती। चल सकती है लेकिन हमारे जैसे बनना पड़ेगा। महाराज वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है तो आपको बड़ी हिंसा छोड़ना है, छोटी हिंसा से चलना है। छोटी हिंसा अनिवार्य हिंसा है, बड़ी हिंसा अनावश्यक हिंसा है ना? ये तो पहली बात हो गई। प्रारंभिक दशा में ये करना पड़ेगा। अब प्रतिपल आपको यही सोचना है, जब आप पानी पीते हैं आवश्यक प्यास की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक पानी लो और उतना ही पियो। ज्यादा फेंकोगे तो नहीं, इधर उधर फेंकना ये आवश्यक हिंसा है कि अनावश्यक हिंसा? अनावश्यक, इसको नहीं करना, उस हिंसा से भी बचना। आवश्यक हिंसा होती ही है। अब प्यास जितनी है उतना पानी तो हमको पीना ही पड़ता है, पिएंगे, ये आवश्यक हिंसा है। लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचना आपका धर्म है। श्रावक अवस्था में श्रावक का धर्म कहां पर होता है? अनावश्यक हिंसा को रोकने से श्रावक का धर्म निभता है। और मुनि महाराज आवश्यक हिंसा को भी त्याग देते हैं और अनावश्यक हिंसा को भी त्याग देते हैं, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ता। आहार करने के लिए आते हैं तो क्या हिंसा करते हैं अपने हाथ से? नहीं करते। आहार दिया जाता है तो दिया हुआ आहार जीव युक्त हो स्वीकार नहीं करते। अनछना जल मुनि महाराज पीते, गरम न किया हुआ जल मुनि महाराज लेते, क्यों नहीं लेते? उसमें जीव हैं। जीव सहित वस्तु को नहीं खाना, जीव रहित वस्तु का ही सेवन करना, और ये भी करना पड़ता है। और लास्ट में जाकर के इस हिंसा से भी, इस आवश्यक बात से भी दूर होने के लिए वो क्या करते हैं, और पुरुषार्थ कर लेते हैं। अंत समय में संलेखना मरण जब ले लेते हैं तो आहार भी जीवन पर्यंत छूट जाता है, और जितने समय के लिए उनका शरीर आहार के बिना रहता है वो संपूर्ण अहिंसक माने जाते हैं, पूर्ण अहिंसक चरम सीमा पर होते हैं, वो है चारित्र की चरम सीमा। और वह संलेखना, वह महाव्रत, उसको साथ में रखते हुए अगर एक बार भी मरण कर लिया तो उस मुनि महाराज के कितने भव रह जाएंगे, अधिक से अधिक 8 और कम से कम 3। अब बाय चांस 3 रह जाए 8 तो रहेंगे ही, इसके अंदर कितने भी रह सकते हैं। श्रावक भी इतने भवों को रख सकता है अनुरत के बल पर। महाराज ये कैसे संभव? ये संभव है, इसलिए तो भगवान ने कहा है अनुव्रत हो या महाव्रत हो, व्रत कभी भी महान ही होता है, छोटा होकर के भी वो महान होता है और महान होकर के बड़ा होकर के भी वो महान होता है, लेकिन फल जो है इन दोनों का एक सा बताया जा रहा है। कैसा फल? एक श्रावक को भी 8 भव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है और एक मुनि महाराज को भी संलेखना लेने पर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। प्रतिमा को धारण करके अगर आपने अंत में संलेखना मरण किया, आपको भी संलेखना मरण है। संलेखना मरण किसको है? प्रतिमाधारी को। जिसके पास प्रतिमा नहीं होती उनको संलेखना मरण लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यक है भी नहीं, और संलेखना ऐसी होती भी नहीं। प्रतिमा पालन करने वाले को ही संलेखना होती है, और ऐसे व्यक्ति संलेखना मरण एक बार कर लेता है 2 प्रतिमा लेकर के, तो वो भी कहते हैं अधिक से अधिक 8 भव में मोक्ष जा सकता है। पेट वड़गांव में बहुत सुविधा है प्रतिमा लेने के लिए, क्योंकि घर घर में कुएं है, पानी छान कर लाया जा सकता है, शुद्ध भोजन बनाया जा सकता है, और सिर्फ बात बची 2 बार सामायिक करना और बाकी समय स्वाध्याय में निकालना, और पंच पाप जो होते हैं परिग्रह वगैरह थोड़ा सा सीमित कर लो, इतने हम साड़ी रखेंगे, इतने हम आभूषण रखेंगे, इतना सोना रखेंगे, इतना चांदी रखेंगे, जो परिग्रह 10 प्रकार का परिग्रह होता है एक देश त्याग करो। ऐसा तो नियम नहीं कि इतना ही करो उतना ही करो, ऐसा कुछ नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा 10 परिग्रह में से आवश्यक परिग्रह को रखो, अनावश्यक परिग्रह को त्याग कर दो। और ये महान व्रत है, सभी महाव्रतों व्रतों में ये परिग्रह परिमाण व्रत श्रावक का मुख्य रूप से पालन करने के लिए आवश्यक होता है, और इसका वह निर्दोष पालन करता है तो इससे ज्यादा धर्म का पुरुषार्थ श्रावक अवस्था में कुछ नहीं है। आगे बढ़ता है तो क्षुल्लक ऐलक बनता है, आरिका बनता है, भव्यात्मा आगे बढ़ करके पुरुषार्थ करके उन व्रतों को पालन करने लगता है, किंतु घर में ही रह करके कुछ करना चाहता है तो वह कर भी सकता है। क्या कर सकता है? कम से कम 2 प्रतिमा का पालन करना आवश्यक है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा यानी सम्यक दर्शन को निर्दोष निर्वाह करना, निर्दोष रखना। सम्यक दर्शन को निर्दोष 25 दोषों से रहित पालन करना। जो सुबह कक्षा में आ रही हैं बातें, 25 दोष क्या होते हैं उसका वर्णन चल रहा है। ये 25 दोषों से मुक्त सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हुए वो अनुव्रत को धारण कर लेता है तो उसके 8 भव रह सकते हैं। आज विजयादशमी है, चक्रवर्ती भौतिक जड़ वस्तु को जीतकर अयोध्या में प्रवेश किए थे, लेकिन यहां पर हमें आत्मा को जीतना है। कैसी आत्मा? विकारी आत्मा, इसकी भिकारी के कार्य को रोकना है और साहूकारी को इसके लिए देना है। ये आत्मा तो अनादिकाल से भिकारी रहा, विकारी होने के कारण अब साहूकारी निभा लो, एक बार एक जन्म में एक भाव में साहूकारी निभा लो। और ये पंच अनुव्रत होते हैं, ये दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा, इनको जीवन में धारण करके एक बार धर्म पुरुषार्थ करो, एक बार संलेखना मरण प्राप्त करो, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए 8 भाव के भीतर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा अपनी आत्मा के लिए ऐसा समझाएंगे तो सोचना प्रारंभ कर सकता है। विजय दशमी है, विकारी आत्मा पर विजय प्राप्त करना है। आज दशमी के दिन दशमी खाकर सोने का काम मत करो। दशमी के दिन विजय प्राप्त करने के लिए सोचो। किस पर विजय प्राप्त करना है? असली युद्ध, असली संघर्ष तो आत्मा के साथ करने का होता है। चक्रवर्ती बाहर से भी दिग्विजयी होकर के लौटा और अपने जीवन में वैराग्य को प्राप्त करके वह भरत चक्रवर्ती क्या करता है? वैरागी होकर आदिनाथ भगवान के समोशरण में उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेते ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पहले सामायिक में ही हाथी पर बैठ के आए, हाथी से नीचे उतरे, वस्त्र परिग्रह सब त्याग दिया, दिगंबर तो धारण कर लिया, केश लोंच कर लिया और सामायिक में बैठ गए। बताया जाता है पहले सामायिक में इतना अच्छा मन लगा, इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतना मन पवित्र हो गया, सर्वोच्च शिखर पर चला गया, पवित्र परिणामों का शिखर पर पहुंच करके उन्होंने घाती कर्मों को नष्ट ही कर दिया। अंतर्मूर्त के भीतर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो केवली भगवान बन गए, भरत चक्रवर्ती। दोनों पर विजय प्राप्त किया। विजय दशमी के दिन 6 खंडों पर और दीक्षा लेने के बाद 4 घाती कर्मों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना लिया और उसी भाव से वो मोक्ष चले गए। भरत चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान गए, बाहुबली उसी भाव से मोक्ष गए और चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो छोटे छोटे थे, 9 साल के 8 साल के, उन्होंने अल्प उम्र में ही दीक्षा लेकर के छोटी उम्र में ही मोक्ष प्राप्त किया था। ये चक्रवर्ती का चरित्र है। इस चरित्र को जब हम ग्रंथों से पढ़ते हैं तो पता चलता है आत्मा में कैसी कैसी शक्ति है। उस शक्ति का उद्घाटन हम नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा के भीतर शक्ति का उद्घाटन यदि हम एक बार भी कर लेते हैं तो विजय प्राप्त हो सकता है। विजय दशमी के दिन आत्मा पर विजय प्राप्त करने को सोचना चाहिए। क्या ये सोना बांट रहे हैं आप? ये सोना बांटने लायक सोना नहीं है। असल में एक एक तोला सोना बांटते जाना चाहिए, वो तो करते नहीं, नकली सोना बांटते हैं, नकली और झूठ बोलते हैं। आज के दिन नकली सोना बांटकर सोना ले लो और सोने की तरह रहो। अरे वनस्पति पत्ता दे रहे, एकेंद्री जीव है, उसको सोना कह रहे हो और वो एकेंद्री को लेकर के एकेंद्री जीव बन करके जन्म लिया तो क्या करोगे? ये हिंसा का कार्य है, हिंसा धर्म नहीं है। एकेंद्री जीवों की हिंसा होती है, इसको बांटने के बजाय हमारे लिए ये सोचना चाहिए कम से कम एक सिक्के तो दे दो। सोने के सिक्के बांटते थे, कोई बात नहीं, आप चांदी के सिक्के बांटो, कोई बात नहीं, उसी को सोना का सिक्का बना कहो तो वो भी वो झूठ ही रहेगा, लेकिन कम से कम जीवों का घात तो नहीं होना चाहिए। जीवों को घात करके दसवीं मनाना, ये कौन सी विजयादशमी मनाना, ये ठीक नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म क्या है? अहिंसा ही है। अहिंसा को निभाते हुए हमें कोई भी पर्व मनाना चाहिए। तो ये जो सोना बांटते हैं, पत्तों को नहीं बांटना, इतना ही कर लो। और यदि कोई भी आपके सामने पत्ता दे देता है तो उसको ले लो और वापस उसी को दो, इतना तो करोगे। एक पत्ते में अनंत जीव राशि होती है, अनंत जीवों का घात करके विराधना करके लाया जाता है। वो तो बेचारा अपने प्राणों से दुखी होकर के किस गति में चला गया क्या मालूम, और हम विजयदशमी यहाँ पर मना रहे हैं उनको मार करके, हिंसा करके। पत्ता कोई अज्ञानी जीव दे देता है तो ले लो, लेकिन उसी को वापस लौटा दो। तुम अपने तरफ से पत्ता तोड़ना नहीं है, खरीदना नहीं है और बांटना नहीं। यदि बांटना ही चाहते हैं, वो पत्ता दे रहा है तो पत्ता तो ले लेना और उस पत्ते के साथ एक सिक्का दे देना, एक रुपए का, कम से कम एक कप चाय पीने के लिए हो जाएगा वो। हाँ? ये क्या बात है, ये उपकार तो करना चाहिए। आज के दिन तो दक्षिण में ये देखा जाता है कज्जी काई वगैरह बनाया जाता है। अगर विशिष्ट कोई मेहमान आता है तो आओ फराल करके जाओ कहते हैं। होता है कि नहीं? आज के दिन हम छोटी अवस्था में देखते थे, हमको बहुत लोग बोलते थे। और खाने पीने का दिन है, अगर आप खाने पीने का दिन इसको मानते हैं तो एक कज्जी का ही दो। सोना लेना भी नहीं और देना भी नहीं, हाँ, खिलाना पिलाना और भेजना, इसकी कोई हमको जरूरत नहीं होती है। हम कज्जी का ही खा खिलाते हैं, लाओ आओ इधर खिलाओ, खुश करो उनको। समय आपका बहुत हो गया, दसवीं को अच्छी तरह से आज मनाना। कैसे मनाना? अहिंसा पूर्वक मनाना। प्रभु देव तुम्हारे